Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So today was the disappearance day of Sri Ramananda Roy.
Aaj Sri Ramananda Roy ka tirubhav divas hai.
Sri Chaitanya Mahaprabhu taught his principles through four chief followers.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सिद्धांतों को चार प्रमुख अपने अनुयायियों के द्वारा सिखाया
And amongst them, Sri Ramananda Roy is considered exceptional.
और उन चार में से रामानंद राय जो हैं वो प्रमुख माने जाते हैं
Because Sri Ramananda Roy Mahaprabhu taught how a Vaishnav can conquer even Cupid.
तो रामानंद राय के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कैसे एक वैष्णव जो है मदन के को भी पार कर सकता है को भी हरा सकता है
Normally if a man sees a beautiful woman he becomes completely conquered by Cupid
साधारण रूप में जब कोई पुरुष एक स्त्री को देखता है तो मदन के वश में आ जाता है
However Sri Ramananda Roy conquered the pride of Cupid
लेकिन श्री रामानंद राय ने जो मदन का अहंकार था उसको तोड़ा
He was rehearsing a play for the pleasure of Lord Jagannath.
वो एक नाटिका की रचना कर रहे थे श्री जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए.
Called the Jagannath Vallabha Natika.
तो उस नाटिका का नाम था जगन्नाथ वल्लभ नाटिका.
He personally directed very beautiful young girls in dancing.
और वो नाटिका में सुंदर सुंदर जो स्त्रियां हैं वो जो है नृत्य करती हैं श्री जगन्नाथ जी के लिए
But he was never affected by their youthful beauty.
लेकिन श्री रामानंद राय उससे प्रभावित नहीं हुए उनकी सुंदरता से उनके नॉर्मल जीवन से आकर्षित नहीं हुए
Lord Jagannath used to have dancing girls actually Lord Jagannath likes dancing girls that's a fact
श्री जगन्नाथ भवन होने के नाते उनको ऐसी नाटिका लड़कियों की नाटिका जो नृत्य करती हैं भवन के लिए उनको अच्छी लगती हैं
So there used to be these Devi Dasis dancing girls whose whole occupation they were chaste virgins and their whole occupation was dancing for Lord Jagannath
तो ऐसी जो स्त्रियां हैं जो नाटिका में भवन श्री जगन्नाथ जी के लिए नृत्य करती हैं उनको देवदासी कहते हैं
So Ramananda Roy, he used to bathe these girls, these dancing girls, with his own hands. It means they were naked, you know, and he was not disturbed. We can't imagine such a thing, or an ordinary man cannot imagine such a thing.
तो रामानंद राय उस नाटक की तैयारी करने के लिए उन देवदासियों का स्नान भी कराया करते थे उनको तैयार भी किया करते थे अपने हाथों से लेकिन उनसे आकर्षित नहीं होते थे
But he always remained calm and free from passion.
तो वो रजोगुण के प्रभाव में नहीं आते थे और स्वभाव रहते थे
Certainly a paramahansa, topmost quality.
निश्चित रूप से हमें पता चलता है कि इससे वो एक परमहंस थे
And the eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu.
और वो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर हैं
But of course Mahaprabhu was a very strict sannyasi acharya.
और चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही कड़े सन्यासी होने के नाते एक आचार्य होने के नाते
As we know from the story of Junior Haridas, how disturbed he became when Junior Haridas simply went and begged sweet rice from some woman and was alone with her briefly while he was begging sweet rice, a very innocent activity. Still Mahaprabhu became completely disturbed by that.
तो हम लोग जो हैं उस एक ऐसे लीला से देखते हैं छोटा हरिदास के जिनमें उन्होंने एक बहुत ही उनका संपर्क किसी स्त्री से बहुत ही थोड़ी देर के लिए था जब उन्होंने कुछ मीठे चावल या खीर उनसे मांगी थी लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसके लिए भी उनको माफ नहीं किया
But the same Mahaprabhu was not at all disturbed that Ramananda Roy was massaging young girls. It didn't bother such a strict acharya, it didn't bother him at all. But of course, Ramananda Roy was not a sannyasi. It was householder, so there is a distinction. I mean, if you were sannyasi, then Mahaprabhu would never have allowed.
तो हम देखते हैं कि वही श्री चैतन्य महाप्रभु जो छोटा हरिदास ठाकुर के प्रति इतने सख्त हो गए थे लेकिन रामानंद राय जो कि नाटका के लिए देवदासों के स्त्री को छूते भी थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी उनको उस तरीके से उनका व्यवहार नहीं किया और क्योंकि रामानंद राय एक ग्रस्त भक्त थे और छोटा हरिदास एक संन्यास आश्रम में थे.
So this is a very special activity for Ramananda Roy, which is clear that nobody can imitate this.
तो एक बहुत ही विशेष कार्य था जो स्वयं श्री रामानंद राय ही किया करते थे और इसका हम अनुसरण नहीं किया कर सकते.
Similarly, another eternal associate of the Lord Damodar Pandit, he was notable for criticizing. He was an intellectual and he made criticisms even of Chaitanya Mahaprabhu. He would criticize him. That kind of rasa he had. But Mahaprabhu did not mind because Damodar Pandit, I think he's also known as Srup Damodar, same, isn't it? No, different? Huh? Damodar Pandit and Srup Damodar are different? Two different. Same, that's what I thought.
और एक चैतन्य महाप्रभु के एक और पार्षद थे जिनका नाम था श्री स्वरूप दामोदर जो अपने पांडित्य के लिए बहुत मशहूर थे और अक्सर जो है चैतन्य महाप्रभु को भी जो है वो मैं जो है उनके कभी कभी आलोचना किया करते थे.
So from the Chaitanya Charitamrita Adi Lila, Srila Prabhupada points out that Prajumna Mishra was born from a Brahmin family and Ramananda Roy from a non-Brahmin family. In other words, Ramananda Roy actually was born in a Sudra family.
So, Chaitanya Charitamrita mein Srila Prabhupada ji likhte hain ki jo Prajumna Mishra the wo ek Brahmin kul se unka janam hua tha lekin Ramananda Roy jo hain wo ek
Nevertheless, Mahaprabhu advised Prajumna Mishra to take instruction from Ramananda Roy.
इसके बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को आदेश दिया कि वो रामानंद राय से शिक्षा ले.
So here we see that Vaishnavas are beyond Varnashram Dharma.
This is हम ये देखते हैं कि वैष्णव वर्णाश्रम धर्म के परे
हैं. True devotees are far beyond.
वो वैष्णव धर्म वर्णाश्रम धर्म के अंदर नहीं आते.
Otherwise, how could a Brahmin take instruction from a so-called sutra? Because he was not actually a sutra. That's the point. He was transcendental.
तो अगर वैष्णव वर्णाश्रम धर्म के अंदर आते तो एक ब्राह्मण एक शूद्र से कैसे शिक्षा ले सकता है? इससे हमें ये पता चलता है कि वैष्णव ना शूद्र होते ना ब्राह्मण होते, उनसे परे होते हैं.
This incident is described in Anchi Lila chapter 5.
तो ये आदि लीला अध्याय 5 में इसका वर्णन है.
Ramananda Roy is the name of the father of Ramananda Roy.
तो रामानंद राय के पिता का नाम भावानंद राय था.
From a village, Brahmagiri, which is about 24 kilometers west of Jagannath Puri.
तो वो एक उनका जो जन्म स्थान ब्रह्मगिरी नाम का स्थान था जो कि 12 मील दूर है जगन्नाथ पुरी से.
His caste was called the Kayastas, or sometimes they were called Sudras.
तो जाति से वो कायस्थ परिवार से थे या शूद्र परिवार से थे.
So Ramananda Roy was the governor, so he was also a governor of Madras. What do they call Madras now?
Chennai.
Huh?
Chennai.
Oh, Chennai, that's right. He was the governor of Chennai under the control of King Pachaputra, who was centered out of Jagannath Puri.
So Ramananda Roy jo hai wo Madras ke governor the. और वो मद्रास जो है वो महाराजा प्रताप रुद्र के के नियंत्रण में चलता था.
So we see that the pure devotees are not subject to the restrictions of Varnashram Dharma.
तो हम यहाँ देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वो वर्णाश्रम धर्म के अंदर नहीं आते.
King Pachaputra was another eternal associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Maharaj Pratap Rudra bhi Chaitanya Mahaprabhu ke nitya parshad the.
And because he was king at first, Chaitanya Mahaprabhu would not associate with him, but later through some trickery, I won't tell the whole story, but later through some trickery, King Pratapruja, taking off the clothing of king, was able to massage Chaitanya Mahaprabhu and tell him sweet things about Krishna and win his heart that way.
So, महाराज प्रताप उदय क्योंकि एक राजा थे तो वो चंद्र महाप्रभु से उनका मिलना वर्जित था लेकिन थोड़ी सी छल से वो चंद्र महाप्रभु की सेवा कर पाए और उनको कृष्ण क्या के बारे में कुछ बताने लगे
So remember Ramananda Roy is the father of Ramananda Roy
तो भावनंद राय जो है श्री रामानंद राय के पिता थे
This is from the Adi Leela Chapter 10, text 134, purport by Srila Prabhupada.
So, Adi Leela ke 10th adhyay ka 134th shlok prayar ka tatparya mein Srila Prabhupada ji likhte hain.
Sri Chaitanya Mahaprabhu told Bhavananda Roy, your five sons are all my very dear devotees.
So, Chaitanya Mahaprabhu ne Bhavananda Roy ko ek cheez kahi ki aapke panchon putra jo hai mere bahut hi priya bhakt hain.
But Ramananda Roy and I are one, although in two bodies.
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रामानंद राय और मैं एक ही हैं, हालांकि हम हमारे दो अलग शरीर हैं.
So the Gaura Ganadisha Dipika. This is the shastra that explains all the confidential identities of the associates of Chaitanya Mahaprabhu.
तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है गौर गणोदेश दीपिका जिसमें हम लोग चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद उनका नित्य स्वरूप के बारे में जानते हैं
सो द गौर गणोदेश दीपिका सेज दैट रामानंद रॉय वाज इनकार्नेशन ऑफ अर्जुन
तो गौर गणोदेश दीपिका ये बताती है कि रामानंद राय श्री अर्जुन के अवतार थे
यू लुक डाउटफुल यू नो दैट्स ऑल राइट डज दैट मीन योर अप्रूवल What do you say?
Just saying, Maharaj, I'm hearing you attentively.
Okay, good. So, incarnation of Arjuna.
So, Arjun ke avatar the.
Other acharyas give the opinion that he was an incarnation of Lalita, and yet other acharyas say he was incarnation of Vishakha. So, sometimes amongst big acharyas there are differences of opinions or at another way of looking at it is that sometimes we find that there's more than one personality in the same body so it could they could all be true
to kuch aise acharyon ka manna hai ki ramanand rai jo hai wo lalita sakhi ke bhi avatar hain aur kuch anya acharyon ka ye manna hai ki wo vishakha devi bhi hain तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी आचार्यों के मत में कभी कभी भेद देखा जाता है या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही शरीर के अंदर दो से तीन जीव भी रहते हैं
सो महाप्रभु सेड ऑल्दो आई एम अ सन्यासी समटाइम्स माय माइंड इज डिस्टर्ब्ड व्हेन आई सी अ वुमन
तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हालांकि मैं सन्यासी हूँ लेकिन मेरा मन उत्तेजित हो जाता है जब मैं स्त्री को देखता हूँ
You know, he was playing the role of a devotee as if he were an ordinary. It's not that he was actually disturbed by lust. We should not be confused.
तो हमें ऐसे भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु काम के वश आ जाते हैं. वो एक भक्त के रूप में जो है हमें चीज सिखा रहे हैं.
He was role playing as if he were a conditioned soul.
वो एक तरीके से नाटक कर रहे हैं एक एक जीव का हमें ये चीज सिखाने के लिए.
He used to say, even a wooden form, even a wooden doll of a woman disturbs my mind,
Mahaprabhu said. So,
But Mahaprabhu glorifies Ramananda Roy by saying, "But even a Ramananda Roy is greater than me because he's always undisturbed."
So Chaitanya Mahaprabhu says, "Ramananda Roy is also greater than me because he is not disturbed."
What's the word for undisturbed? Undisturbed, Vishnu? Huh? Undisturbed, well, I'm looking for another word. Dear, yes, thank you very much. Hare Rama. Like the song of the six Goswamis, Dira Dira Jana Jana Priyakaro. So this Dira means undisturbed. So a self-realized soul is undisturbed by the world of sense gratification.
So, जो जिसने जिसका आत्म साक्षात्कार हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो है, वो धीर रहता है, वो विचलित नहीं होता.
So Mahaprabhu is glorifying Ramananda Roy by saying he is amazing because he's undisturbed even if he touches a woman, you know, and he's taking the role of a conditioned soul by saying, I can't do that, you know, I can't be like that, he's greater than I am. This is he's demonstrating Vaishnava humility.
Jatra Mahaprabhu is showing Vaishnava vinamrata, this is saying that ek bad jeev ka ke roop mein aisa dikha rahe hain ki main जो है उत्तेजित हो जाता हूँ रामनंद राय लेकिन अगर स्त्री को छूते भी हैं लेकिन उत्तेजित नहीं होते.
And the Adi Lila chapter 10 is described that Chaitanya in Mahaprabhu's final pastimes.
तो जो चैतन्य चरितमृत का आदि लीला का दसवां जो अध्याय है उसमें हम चैतन्य महाप्रभु के जो अंतिम लीलाएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं.
That Ramananda Roy and Srup Damodar, they always engage in reciting suitable prayers from the Shastra about Krishna's pastimes in order to pacify the Lord in his transcendental madness.
So Mahaprabhu padhte hain ki kaise Chaitanya Mahaprabhu ki jab antim leela hain jisme wo purn roop se bhavvesh mein aaya karte the tab Ramanand Rai aur Swarup Damodar alag alag shastron mein se Vanshi Krishna ki sundar sundar leelaen aur ka vandan kiya karte the unko sunaya karte the.
They would recite verses from Srimad Bhagavatam and other books, and in this way they would give Mahaprabhu doses of Krishna Leela that would help to counteract his extreme viparlamba.
So, वो भागवतम और ऐसे अन्य शास्त्रों में से श्लोकों का उच्चारण किया करते थे, महाप्रभु को सुनाए करते थे, ताकि महाप्रभु का जो विरह महाप्रभु महसूस कर रहे थे, वो शांत हो सके.
Externally speaking, of course, Ramananda Roy is an eternal associate of the Lord.
So Ramananda Roy, Bhagwan Shri Krishna, Bhagwan Chaitanya Mahaprabhu ke nitya parshad hai.
But in Bhuva Leela, on earth Leela pastimes, Mahaprabhu met with Ramananda Roy by the mercy of Sarvabhauma Bhattacharya.
लेकिन हालांकि वो नित्य पार्षद हैं लेकिन भवमलीला में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु रामनंद राय से मिलते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा.
As a Mahaprabhu was preparing for his tour of South India, which it was a huge tour actually. He went all over everywhere in South India.
चैतन्य महाप्रभु इस दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं और वो यात्रा बहुत बड़ी और विस्तार होती है.
But Sarvabhauma Bhattacharya advised him to meet with Ramananda Roy because Sarvabhauma Bhattacharya was aware that Ramananda Roy was a great devotee and that he would give pleasure to Mahaprabhu.
So when he came on this journey, Mahaprabhu left. Sarvabhauma Bhattacharya asked Mahaprabhu to ask that in the Dakshin Bharat journey, he must meet Ramananda Roy because he knew that Ramananda Roy was a very good devotee. So Sarvabhauma Mahaprabhu was very pleased.
Sarvabhauma told Lord Chaitanya that there was no devotee more expert than Ramananda Roy in discussing the conjugal affairs of Radha and Krishna. That's pretty high, you know, considering how particular Mahaprabhu was.
So Sarvabhauma Bhattacharya Chaitanya Mahaprabhu kaha ki Ramanayan se badhkar koi bhi Bhagwan Shri Krishna ki jo antarang leela hai shayad nahi janta.
So there is a famous place in South India, on the banks of the Godavari. Godavari is a huge river, huge river. It's as in the town used, well, it was on the bank of the Godavari. The city, there's now a city named Rajmundry that is across the river.
So, दक्षिण भारत में बहुत ही बड़ी नदी है उनका नाम जिसका नाम है गोदावरी. तो गोदावरी के तट पे एक बहुत ही बड़ा शहर है जिसका नाम है राजमुंडरी.
There is a Gaudiamath temple in the location where Ramananda Roy met with Chaitanya Mahaprabhu. It's the other side of the river. This river is so wide, it must be half kilometer or more wide. maybe even a kilometer wide. I say a kilometer wide, like Ganga Devi. She's huge down there, very big.
तो जिस स्थान में चतन महाप्रभु रामानंद राय से मिले थे वहां पर आज भी एक गौड़िया मठ है और उस नदी के तट पर गोदावरी नदी जो है वो बहुत ही चौड़ी है महाराज बता रहे हैं करीबन आधे मील या एक मील लंबी चौड़ी एक मील चौड़ी है
So it's very interesting the ras between Ramananda Roy and Chaitanya Mahaprabhu.
ये बहुत ही दिलचस्प है जो रस चैतन्य महाप्रभु रामनारायण के बीच में है
Because Chaitanya Mahaprabhu took the position of a student. In other words, he would just sit like this and listen to the super Braja nectar spoken by Ramananda Roy as if he were a student, a reverse role. This was the confidential relationship.
So, उनके बीच में चैतन्य महाप्रभु रामनारायण राय के बीच में जो रिश्ता था बहुत दिलचस्प क्यों था क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होने के नाते भगवान होने के नाते भी रामनारायण राय के सामने एक शिष्य के रूप में उनसे जो है वो ब्रज लीलाओं के बारे में श्रवण किया करते थे
These discussions are recorded in the Chaitanya Charitamrita.
और उनके बीच में जो संवाद हुआ वो आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ सकते हैं
Mahaprabhu concluded discussions by saying, My dear Ramananda Roy, both you and I are madmen.
तो संवाद के बाद चैतन्य महाप्रभु निष्कर्ष निकाला कि रामानंद राय तुम और मैं जो हैं बिल्कुल
Therefore, we met intimately,
दो पागल व्यक्ति के समान हैं।
We met intimately on an equal level.
So, तो हमने जो है वो एक ही स्तर पर संवाद किया है।
So Lord Chaitanya advised Ramananda Roy to resign from his government duties in Chennai. And go to Jagannath Puri and join his Sankirtan party. Hare
Krishna.
चतुर महाप्रभु ने भी रामनंद राय को ये परामर्श दिया कि वो नौकरी छोड़के उनके संकीर्तन आंदोलन में आके जुड़ जाएं.
Wouldn't that be nice? Receive a personal invitation from Lord Chaitanya to come live with him. He invited Ramananda Roy to come live with him. That's pretty high, you know.
तो ये क्या अच्छा नहीं होगा कि स्वयं भगवान ही हमें नौकरी छोड़ने के लिए कहें और उनके साथ जो है उनके साथ मिल जाने को कहें
So again it is noted in this biography here short biography that Mahaprabhu the same Mahaprabhu refused to meet with King Pratyaparudra
और हम उसी में आगे देखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो वहां के महाराजा थे प्रताप रुद्र उनसे मिलने को मना कर देते हैं
रामानंद रॉय वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द वाटर स्पोर्ट्स ऑफ द लॉर्ड आफ्टर द रथ यात्रा फेस्टिवल
सो रथ यात्रा उत्सव के बाद जो है वो
वाटर स्पोर्ट्स
तो वहां पर जो वाटर स्पोर्ट्स होती थी रथ यात्रा के बाद
The water sports are of the Lord and His associates are described in the Chaitanya Charitamrita as very ecstatic.
भगवान की माँ जो जल क्रीड़ाएँ होती थी वो चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हैं और बहुत ही जो है वो बहुत आनंद प्रदान करने वाली है.
For example, sometimes Advaitacharya would lie down on the water and he would assume the role of Lord Vishnu.
तो कभी ऐसा होता था कि अद्वैत आचार्य पानी में लेट जाया करते थे और महाविष्णु के रूप में जो है एक्टिंग करते थे
महाप्रभु वुड लाई डाउन ऑन टॉप ऑफ हिम
और चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर जो है बैठ जाया करते थे या लेट जाया करते थे
As Lord Vishnu floats on you know Lord Vishnu floats on an Adishesha so like an Adishesha he became like Advaitacharya became like the Adishesha couch and Mahaprabhu lay on top of him As Lord Vishnu, like they did all these fun things in the water sports.
तो चैतन्य महाप्रभु ऐसी क्रीड़ाएँ खेला करते थे कि अनंत शेष के रूप में अद्वैताचार्य लेट जाया करते थे और चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर बैठ जाया करते थे जैसे विष्णु अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं।
All the associates of Mahaprabhu would play like little kids in the water, you know, splashing and dunking and all these things.
और चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद थे वो बिल्कुल बच्चों जैसे जो है जल में क्रीड़ाएं करते थे खेलते थे पानी फेंकते थे
इवन अ ग्रेट स्कॉलर सार्वभौम भट्टाचार्य बट द एल्डरली अद्वैताचार्य हु इज नॉर्मली फॉर्मलिस्टिक यू नो जस्ट प्लेइंग लाइक अ लिटिल किड यू नो
तो बड़े बड़े पंडित जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य वो भी बच्चों से खेला करते थे अद्वैताचार्य वो भी
Chaitanya, this is quite amazing. Lord Chaitanya considered Ramananda Roy and Sanatana Goswami to be equal in their renunciation.
So Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Roy and Sri Sanatana Goswami, जो सनातन गोस्वामी का वैराग्य था और वो रामनारायण के वैराग्य को एक समान ही मानते थे।
हरि बोल।
हरि बोल।
तो रामानंद रॉय, as we mentioned, was a householder, yet Mahaprabhu was giving him the credit of being equal to सनातन गोस्वामी। That's very high assessment।
तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हालांकि रामनारायण रॉय गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन फिर भी जो है वो उनको सनातन गोस्वामी के वैराग्य की से के एक समान माना करते थे।
श्री रामानंद रॉय वाज वन ऑफ द 3.5 पर्सनालिटीज विद हिम चैतन्य महाप्रभु डिस्कस्ड द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस।
तो चैतन्य महाप्रभु जो अपने जो आंतरिंग लीला हैं, जिन 3.5 व्यक्तियों से जिनका जिनसे वो वर्णन किया करते थे, बातचीत किया करते थे, उसमें एक रामानंद रॉय।
We find this comes up in Gaura Lila half a person, you know.
तो हम ये 3.5 में हम देखते हैं आधे व्यक्ति हैं गौर लीला में।
Please don't ask me to explain that.
तो ये आधे कैसे हैं इसके बारे में मुझे समझाने के लिए मत कहिएगा।
Can ask, you know, Madhavananda or somebody like that who's expert in Rasa Tattva, boy, that's over my head, this 3.5, but this half a personality thing, it comes up more than once in Chaitanya Lila, that somebody is half a personality, one half one personality, one half another personality.
So you can ask this, like Madhavan Prabhu, who understands the Rasa Tattva very well, but we see here that the 3.5 is the half of the person, this is the one time it comes to Chaitanya Charitamrita.
So the same as Subal was always assisting Krishna in his pastimes of Radharani.
तो जैसे सुबल कृष्ण की सहायता करते थे राधारानी के जब 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 श्री कृष्ण राधारानी से मिलने जाते थे।
So Ramananda Roy always assisted Lord Chaitanya Mahaprabhu in his feelings of separation from Krishna. So this was the intimacy of the Ras.
तो उसी तरीके से रामनंद राय जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के जो विरह के भाव हैं उसमें उनकी सहायता किया करते थे।
We mentioned the play Jagannath Ballabha Natika.
और जैसे मैंने बताया कि उन्होंने जगन्नाथ बल्लभ नाटिका की भी रचना की थी।
Ramananda Roy was the author of that play.
और वो उसके उस नाटिका के रचयिता थे, ऑथर थे।
He was a very talented poet.
और वो बहुत ही दक्ष कवि थे।
Okay. So that's all I have on Ramananda Roy.
तो मुझे इतने ही आप लोगों को बताना था रामानंद राय के बारे में।
We can just always appreciate, try to appreciate how this demonstrates the rasa between Ramananda Roy and Chaitanya Mahaprabhu demonstrates that Varnashram Dharma is external. We always have to remember that.
तो रामनंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो रस था उस समय ये समझ में आता है कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो एक्सटर्नल है, वो बाह्य है।
We have to remember in our own ISKCON movement, therefore we see, or this is why we have the argument with the pandas in Jagannath Puri, because devotees in ISKCON movement are made up of every walk of life.
तो यही हमारा जो है वो जगन्नाथपुरी के पांडवों से यही एक तरीके से लड़ाई होती है कि जो वर्णाश्रम धर्म है हम देखते हैं इस्कॉन में कि हम जो है हर किसी हर श्रेणी के भक्त को हम यहाँ मिल हम पाते हैं देखते हैं इस्कॉन में हर श्रेणी के भक्त हैं।
For example, we see how many Brahmana Diksha Gurus there are. And ISKCON, who were initiated by Srila Prabhupada, but came from low birth in America, because we concede, us white-skinned folk, we concede that taking birth in the U.S. is a low birth. It's much, you know.
तो हम लोग देखते हैं ISKCON में ऐसे कितना दीक्षा गुरु हैं जिन जो जिन्होंने जब आंदोलन में जुड़े तो प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी, हालांकि उनका जन्म एक उच्च कुल में नहीं था। तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई पाश्चात्य जगत में जन्म लेता है तो उसको एक तरीके से नीची जाति का जन्म माना जाता है।
It's clear from the Shastra that even a Malacha can become Guru. If he's purified by surrendering to Guru Parampara, he himself has a bona fide Guru, he can become Diksha Guru also. That's very crystal clear from the Shastra.
So, Shastra se hame saaf saaf is cheez ka hame pata chalta hai, Shastra mein iska saaf saaf varnan hai, ki agar koi Malach parivar mein uska janam hua hai, lekin ek pramanik Guru ki sharan leta hai, unse Diksha leta hai, to wo bhi Guru ban sakta hai.
So the power of Srila Prabhupada, Sakyamuni Avatar, we have to see that he could take malachas and turn them into pure devotees, into gurus.
So Srila Prabhupada, who was a Shaktyavesh avatar, his unbeatable shakti was that he could make malachas into pure Vaishnavas.
Of course, the smarter Brahmins, they cannot swallow this. Smarter Brahmin means
the smart Brahman, who is not able to understand this.
Smarter Brahman means these rules and regulations, madam. Brahmins. Who are adhering to strict rules and regulations, they can never accept that somebody born as a Sudra, even Ramananda Roy, they would never be able to accept that he could be as good as a Brahma or better than a Brahma. They wouldn't be able to, so they're ignorant fools because they don't know the Siddhanta of Chaitanya Charitamrita.
So, जो समर्थ ब्राह्मण है वो इस चीज को नहीं समझ सकते या नहीं मानना चाहते कि जो है वो शूद्र भी एक वैष्णव बन सकता है क्योंकि वो नियमों में फंस जाते हैं और ये चीज स्वीकार करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है।
Mahaprabhu, it's very interesting. I was reading a magazine once. I was sitting on the train. I didn't have anything to read, and there was a newspaper, and it was glorifying the Chaitanya era in the history of India. So historians, Indian historians, speak of the Chaitanya era. Very interesting. Karmis, non-devotees.
So, एक बारी मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था और मैंने देखा वहाँ पर एक अखबार पड़ी थी और मैं जब अखबार पढ़ने लगा तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि हालांकि वो भौतिक अखबार था जो कि कर्मियों द्वारा लिखा गया था लेकिन उसमें भी चैतन्य महाप्रभु का जो एरा था जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उसका गुणगान किया हुआ था।
So they are crediting Mahaprabhu, they call it the Chaitanya era because he smashed Varnashram, he smashed it. In other words, okay, the transcendental aspect, in other words, he didn't care what background his devotees were coming from. If they chant Hare Krishna, they all could became pure devotees. So he didn't care what their background was. So the newspaper, this non-devotee newspaper, was glorifying that he, the Chaitanya era, whereby he smashed caste system, they referred to it, of course, caste system, and he did.
So, उस अखबार में विशेष चीज से चैतन्य महाप्रभु का इस रूप में गुणगान हो रहा था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने हर कुल और जाति के भक्तों को स्वीकार किया। वो ये मानते थे कि अगर उसका पिछला जीवन कैसा भी क्यों ना हो लेकिन अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वो शुद्ध हो सकता है। तो इस चीज का जो है चैतन्य महाप्रभु का वो गुणगान कर रहे थे उस अखबार में।
फॉर एग्जाम्पल महाप्रभु मेड हरिदास ठाकुर नामाचार्य,
जैसे चैतन्य महाप्रभु मिले हरिदास ठाकुर नामाचार्य।
यू ऑल नो दैट नामाचार्य हरिदास ठाकुर वाज born in a Muslim family.
तो हम शायद आप लोग जानते होंगे जो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हैं वो उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ।
Of course, he was an incarnation of Lord Brahma.
हालांकि वो ब्रह्मा के अवतार थे।
When Lord Brahma was invited to participate in Gaura Leela, because remember, you know, his pastimes with Krishna, Brahma Mahotsa Leela. That was 5,000 years ago.
तो जब ब्रह्मा जी गौर लीला में उन्होंने भाग लिया तो उन्हें भाग हरिदास ठाकुर के रूप में लिया।
So only 528 years ago, that same Lord Brahma was invited to come down and engage in Gaura Leela.
So करीबन 528 वर्ष पहले ब्रह्मा जी जो हैं उनको आमंत्रण किया गया था कि गौर लीला में भाग ले और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में आए।
But Lord Brahma was reluctant actually.
हालांकि ब्रह्मा जी जो हैं वो संकोच कर रहे थे आना नहीं चाहते थे.
Because he told, I don't know, recall if it was Krishna or Narada or Mahaprabhu himself, but he told them, oh, there's some risk, you know, I can join the Gaura Leela, that will be very great honor.
तो हालांकि वो संकोच इसलिए कर रहे थे कि वो कहने लगे भगवान श्री कृष्ण को या चैतन्य महाप्रभु को ये सही सही नहीं रूप से नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये प्रार्थना की कि हालांकि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि अगर मैं गौर लीला में भाग लूंगा.
Was either Krishna or Mahaprabhu himself? I don't recall.
मुझे ठीक ठीक से याद नहीं है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा या चैतन्य महाप्रभु से कहा.
Well, Lord Brahma said, I am worried because I don't want to, if I become your intimate associate in Gaura Leela, I don't want to get puffed up the way I did before at Brahma Mahotsava Leela. I don't want to get puffed up like that. So how can I, you know, be protected against that? Because, okay, I'll join your Sankirtan party, but I'm worried that I'll get puffed up by, you know, being an intimate associate, your intimate associate, you know.
तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मुझे ये इस बात का डर है कि अगर मैं आपका आंतरिक पार्षद बन गया गौर लीला में तो मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए जैसे कृष्ण लीला में आ गया था, तो इस चीज से मैं जो है डरता हूँ.
So Lord said, don't worry, I'm going to put you in a low berth so you can't get puffed up. This is one of the reasons that Haridas Thakur was, Lord Brahma was put in a Muslim body as Haridas Thakur, to grant that desire of Lord Brahma not to get puffed up, you see, because then he couldn't be puffed up because he didn't even try to enter the temple at Gurganathpuri. Didn't even try.
तो भगवान ने उनको कहा कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा जन्म मैं एक नीची जाति में दूंगा, तो जिससे तुम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर पाओगे, तो इसलिए तुम हमेशा विनम्र भाव में ही रहोगे.
Brown colored skin, he probably could have got in, but he wouldn't do it on principle because he knew that it wasn't allowed, so he wouldn't violate that rule.
तो हालांकि वो जो है उनकी त्वचा जो है ब्राउन रंग की थी या एक साधारण हिंदुस्तानी जैसी थी, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप से क्योंकि जानते थे मैं दूसरी जाति का हूँ, मुसलमान जाति से हूँ, तो इसलिए वो मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किया करते थे.
So this is the glories of this Hare Krishna movement that is completely transcendental, and we see now how it doesn't matter what the background is, Russian, South American, North American, Italy, everywhere, devotees, many of whom are advanced in Krishna consciousness regardless of their low birth.
तो ये कृष्णा भावना अमृत आंदोलन की महिमा है कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी कुल या जाति का क्यों ना हो, चाहे वो रशिया से हो, अमेरिका से हो, इटली से हो, लेकिन वो इस आंदोलन से जुड़ के एक शुद्ध वैष्णव बन सकता है.
So just in case you run across it, so you don't get confused, Prabhupada wanted ISKCON to establish Daivi Varnashram.
इससे पहले कि आपके अंदर कोई भ्रांति किसी रूप से आए, हमें समझना चाहिए कि शीला प्रभुपाद देवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना चाहते थे.
दैवी वर्णाश्रम means वर्णाश्रम धर्म on the transcendental plane, not on the mundane plane. Because Mahaprabhu in his talks, I think was Sanatana Goswami, rejected वर्णाश्रम in the beginning as mundane. But then why would Prabhupada want order this movement to establish Varnashram, but he said Daivi Varnashram is different. It's transcendental Varnashram, you understand?
तो महाराज बता रहे हैं कि जैसे चतुर महाप्रभु ने जो है शायद श्री सनातन गोस्वामी के सामने जो है इस वर्णाश्रम धर्म का तिरस्कार कर दिया था क्योंकि वो भौतिक स्तर पर है, तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म क्यों चाहते थे, क्योंकि वो दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना चाहते थे जो कि आध्यात्मिक स्तर पर है, भौतिक स्तर पर नहीं.
Prabhupada received a lot of criticism from Brahmins and the Pandas of Jagannathpuri and so forth by making Brahmins out of Westerners, and the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to have this fight with the Brahmins also. They don't want to, because they don't accept that Krishna consciousness is transcendental and that the Varnashram doesn't matter. One is purified by pure Sanatana Dharma, then it doesn't matter what your birth is. This movement proves it. This movement proves it big time.
Srila Prabhupada ji ki aur unke guru Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Maharaj ji ki bhi kafi alochna hua karti thi is baat ko ki wo jo paschatya jagat ke log the unko unhone brahman bana diya, lekin kyunki wo log ye cheez nahi samajhte ki jo krishna bhakti hai wo adhyatmik star pe hai, wo in cheezon pe nirbhar nahi karti.
So only,
janam kul jati ke pe nirbhar nahi karti.
Only a sakya vaishavatar like Srila Prabhupada could turn mlechas into gurus. But demonstrating because he's got the Gaura Shakti, fully empowered by Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. In this way, Prabhupada turned persons born mlecha into pure devotees, into gurus, Diksha gurus. Only a Sakyavesh avatar could do like that.
So Maharaj is telling that only one Sirf Sakyavesh avatar, Srila Prabhupada ji, jaise jinke paas Gaura Shakti thi, जो कि मलेच्छ यावन लोगों को भी जो है एक शुद्ध भक्त बना सकते हैं, उनको भी एक दीक्षा गुरु बना सकते हैं, ये शक्ति सिर्फ एक शक्ति विशवतार के अंदर ही आ सकती है, वो ही ये ऐसा कार्य कर सकते हैं.
Okay, we'll stop there. Shri Ramananda Roy ki jai, Jagat Guru Sri Prabhupada ki jai, Nitya Gaur Premanande.